तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। यानि कानि च पापानि। आगे क्या? ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। इस कथा के बाद में हम तुलसी देवी का प्रदक्षिणा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज के इस नित्यानंद त्रयोदशी के पवित्र दिवस पे दोपहर के समय आप सब लोगों का श्री वृंदाकुंड इस दिव्य स्थान पर स्वागत है। श्री वृंदाकुंड धाम की, श्री वृंदा देवी की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। गुरुदेव की जय हो। हरे कृष्ण। भगवान की जो गोपियां हैं, अनंत प्रकार की गोपियां हैं, उसमें अष्ट सखियां सबसे प्रधान हैं। फिर भी वृंदा देवी इन सब में बड़ी विशेष गोपी है, वृंदा गोपी। और ब्रह्म वैवर्त के अनुसार और बहुत सारे गर्ग संहिता के अनुसार कई प्रकार की वृंदा देवियां हुई हैं। लेकिन जिस वृंदा देवी को हम पूछते हैं वो जलंधर की पत्नी वृंदा देवी है। वृंदा गोपी भगवान की सखी हैं कौलोक वृंदावन की। तो किसी लीला में उनको शाप प्राप्त हुआ कि उनको पृथ्वी पर राक्षस की पत्नी होकर आना होगा, तो जन्म लिया उन्होंने और जालंधर राक्षस की पत्नी बन गई वो। और जालंधर राक्षस जो है वो इतना प्रभावी हो गया, इतना शक्तिशाली हो गया केवल एक कारण से, क्योंकि वृंदा देवी उनकी पत्नी थी। उनका पातिव्रत धर्म जो था वो इतना पावरफुल था, शक्तिशाली, कि उसके वजह से जालंधर अवध्य हो गया, यानी अजेय हो गया। उसको कोई हरा नहीं सकता है, कोई मार नहीं सकता है। तो उससे प्रमत्त होकर उसने अनेक बार देवताओं पर आक्रमण किया और उनको परास्त करके सब राज्य छीन लिया उनका। और वृंदा देवी का पतिव्रत इतना तेज था कि लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। राक्षस अपना आतंक करते जा रहा है, उसको लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और वृंदा देवी अपने पातिव्रत्य पर टिकी हुई है। तो सभी देवता लोग भगवान के पास गए उनको जालंधर के आतंक से बचाना। तो भगवान ने कहा कि इसका पातिव्रत्य भंग किए बिना तो इसको मार नहीं सकते। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम अवतार लेते हैं, इनका पातिव्रत्य भंग कर देते हैं। वैसे वृंदा देवी गौलोक से भगवान की शुद्ध भक्त हैं, लेकिन इस लीला में वो राक्षस की पत्नी बनी हुई है। और अभी भी भगवान के भक्त है, ऐसा नहीं कि भगवान के भक्त नहीं है। तो फिर भगवान देवताओं को कहते जाओ जालंधर को आह्वान दो युद्ध में, युद्ध में ललकारो उसको। तो देवताओं को बहुत डर लगा कि अभी इतनी बार परास्त हो चुके हैं, इतनी बार मार खा चुके हैं। जैसे वो था ना सुग्रीव, वो उसको बाली ने इतनी बार पीटा था, भगवान बोल रहे हैं कि एक बार और ललकारो उसे। तो भगवान किस बल से ललकारो, अभी तो कल ही पीट के आया हूँ। बोले क्या करूं, कल जब आप पीटे जा रहे थे तो दोनों इतने समान दिख रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था किसको बाण मारूं। अगर गलती से आपको बाण लग गया तो फिर लेकिन आपको जो कंफ्यूजन रहा उसलिए मैं दिन भर पिटता रहा, उसका क्या? हाँ, उसी प्रकार से भी इतने बार पिटे गए देवता, भगवान बोल रहे दोबारा ललकारो उसको, मतलब सिंह के मुख में हाथ डालो। लेकिन भगवान ने कहा चिंता मत करना, मैं उसका इलाज करूंगा। तो देवताओं ने जब उनको ललकारा तो जलंधर को बड़ा आश्चर्य हो गया, अभी मैंने इतना उनको परास्त करके आया हूं फिर भी कैसे हिम्मत प्राप्त हो रही है इनको। तो फिर भी वीर तो वीर ही होता है, जैसे उसकी जो तारा थी ना बाली की पत्नी, वो ललकार सुन रहा है बाली, वो तुरंत गदा लेके निकल रहा है, इतनी हिम्मत। तो तारा बोल रही सावधान रहना, जो कल इतना पीटा जा चुका है वो दोबारा आज सुबह आकर आपको ललकार रहा है, मतलब पीछे उसके कोई बलवान शक्ति है, इसलिए मत जाना आप। बोला कोई नहीं, आई डोंट केयर, जो ललकार रहा है मैं जाऊंगा। उसके पीछे भगवान राम की शक्ति थी, इसलिए उसके दोबारा हिम्मत प्राप्त हुई ललकारने की। हमारे ना अपना जो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल का पहला फ्लैट लिया था ना मेरा रोड में, तो पहले एक फ्लैट लिया था हमने, उसमें कुछ ओपीडी शुरू किया था, फिर दूसरा फ्लैट लिया, फिर उसके अंदर ओपीडी के बाद में एक्सरे पैथोलॉजी शुरू किया था, फिर तीसरा फ्लैट लिया उसके अंदर फिर वार्ड्स 14 बेड और ओटी शुरू किया था। तो जब पहला फ्लैट का डीलिंग करने हम गए थे उसके पास, तो वो सब बातचीत हुई हमारी और हम बात करके करते बाहर आए गेट पे, और गेट पे आने के समय वो भी हमको गेट में विदा करने के लिए आया, हम सब लोग थे और वो भी आया। उसके बाद एक कुत्ते का पिल्ला था छोटा सा, वो भी उसके पीछे पीछे गेट के पास आया, सोसाइटी के गेट के पास आया। तो जैसे ही वो कुत्ते का पिल्ला बाहर आया तो बाहर से बड़े बड़े कुत्ते ऐसे जोर जोर से भौंकने लगे। तो ये कुत्ते के पिल्ले ने क्या किया, अपने मालिक के दो पैर के बीच में आया, इतने जोर जोर से भौंकने लगा बड़े कुत्तों पर, इतना सा पिल्ला, इतने बड़े बड़े रोड के कुत्ते, लेकिन बिना डरे जोरदार चिल्लाया उनके ऊपर, वो कुत्ते भाग गए, वो बड़े कुत्ते। इसका मतलब हमेशा दुर्बल व्यक्ति को बलवान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, तब उसकी विजय होती है। हम सब लोग दुर्बल है, हाँ? क्या आमी तो कंगाला कृष्णा कृष्णा बोली धाये तव पाछे पाछे, ओए वैष्णव ठाकुरा दया रसा गोरा ए दासे करुणा कोरी, दिया पद छाया सोडोइया माया तुम्हारा चरण धोरी, ओ हे वैष्णव ठाकुरा। तब सब लोग दुर्बल हैं, हम ही तो कंगाला, लेकिन आप सबल हो, शक्तिशाली हो, भगवान के विशेष पार्षद हो, आपके सहारे से आपको पुकार रहे हैं, आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो जब भगवान का सहारा लिया देवताओं ने तो दोबारा आह्वान देने की हिम्मत आई उनके अंदर, ये भी चला गया, युद्ध किया घनघोर, और क्या देखते हैं आप, दोबारा देवता परास्त होने लगे। तो बोले भगवान, देवता लोग बोल रहे क्या हुआ भगवान, आपने कहा दोबारा ललकारो, ललकार दिया, अभी वापस परास्त हो रहे हैं। भगवान भी कैसे है ना, आखिर तक आपकी परीक्षा लेते हैं। कितनी श्रद्धा है ना। जैसे वो साक्षी गोपाल के लीला में भगवान ने कहा ना, मैं पीछे से आ रहा हूँ, घुंघरू की आवाज़ सुनाई पड़े रही, मैं आता हूँ, पीछे मुड़ के देखना नहीं आपको। तो बीच में आवाज़ बंद हो गई तो वो रुक गया, तो क्या हो गया। भगवान वही थे, भगवान हमेशा आपका परीक्षा करते, कितनी श्रद्धा है आपके अंदर। देवताओं को भी लगा दिया ऐसे ही, परास्त होने लगे बेचारे, परेशान हो गए, और तब भगवान ने जालंधर के रूप में अवतार लिया, जालंधर रूप धारण किया और सीधे घर प्रवेश किया, मतलब घर गए। तो वृंदा देवी को लगा, अरे अभी तो युद्ध में गए थे, अभी तिलक करके भेजा था आपको, हो गया युद्ध समाप्त, हो गया समाप्त। आ गए घर पे, वृंदा देवी ने बड़ी पति की खातिर की सेवा की, अंतपुर में गए, जैसे उसका पातिवृत्त भंग हो गया तो उन्होंने कहा था शिव जी को कि शिव जी आप उन पर त्रिशूल का प्रहार करना। तो शिव जी प्रहार करते जा रहे, कुछ नहीं हो रहा है, अचानक उनका त्रिशूल जो उसके गले में घुस गया और गला कट गया उसका। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इतनी बार प्रहार किया कुछ नहीं हुआ, अभी कैसे घुसा। और उसको भी पता था कि मेरा सारा बल जो है वो मेरी पत्नी की पतिव्रता धर्म का है, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी तो पतिव्रता धर्म छोड़ेगी नहीं, मैं तो यहाँ हूँ, वो घर पे हूँ, घर पे है वो, मैं युद्ध में हूँ, कैसे उसका पतिव्रत धर्म भंग हो सकता है? तो वो त्रिशूल में अटका हुआ शीश ऐसा पुकारते पुकारते, वृंदा वृंदा पुकारते हुए घर आया, वो अपने महल में आया। तभी वृंदा देवी, ये विष्णु जलंधर के साथ में अपने अंतपुर में शयन गृह में है, तो वो सुन रही, अरे मेरे पति की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो बाहर आके देखती है तो त्रिशूल पर लटका हुआ सर, कटा हुआ सर जो पुकार रहा है, वृंदा देवी क्या हुआ, वृंदा देवी क्या हुआ? तो बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसे घूर के देखती है, ये कौन है? तो जिस नजर से देखती है वो, तो विष्णु भगवान अपना रूप बनाए रखना नामुमकिन हो जाता है उनके लिए। ही कैनॉट मेंटेन हिज फॉर्म एज जालंधर, इतनी नजर में ताकत है उसके, जैसे वो गंधारी के नजर में थी। जैसे पट्टी खोला, सारा शरीर वज्र का हो गया उसका, इतना पतिव्रत का बल होता है। उस नजर से जब देखा उस व्यक्ति को जो विष्णु बन, विष्णु आए थे जालंधर बन के, तो झट से वो विष्णु रूप में आ गए। भगवान बता रहे हैं एक स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म कितना शक्तिशाली होता है, वो एकदम बलवान हो जाती है उससे। तो जैसे भगवान अपने रूप में आ गए तो वो बहुत दुखी हो गई वो, और तुरंत वो शीश उसके गोद में आया। तो उस समय उसने भगवान को शाप दे दिया कि तुमने मेरा पातिव्रत्य भंग किया है, तुम पत्थर बन जाओ। तो भगवान के, हम जरूर पत्थर बनेंगे, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आपके शाप द्वारा हम पत्थर बनेंगे, लेकिन हम पत्थर वहां बनेंगे जहां पर आपके चरण कमल होंगे। तो भगवान ने कहा कि आप पौधा बन जाओगे और आपके चरण में हम रहेंगे। तो वो है शालिग्राम शिला, भगवान शालिग्राम शिला पत्थर बन गए, और भगवान ने भी उनको पौधा बना दिया, ऐसा पौधा बना दिया कि दुनिया में ऐसा कोई पौधा नहीं है, है ना। 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है वो, और कितने प्रकार की जड़ी बूटी औषधियाँ उनसे बनती है, पवित्रकारी है उसके। ऐसे कहा गया कि वो पौधा इतना शक्तिशाली है कि उसके पत्ता जो है ना, तुलसी का पत्ता, तुलसी पत्र, वो जिस भी जल को स्पर्श करेगा, दुनिया की जितनी पवित्र नदियाँ हैं उस जल में प्रवेश कर देती है। अगर आपको आचमन करने को नहीं आता तो भी चलेगा, मंत्र वंत्र नहीं आता है, एक तुलसी का पत्ता लेकर एक पात्र में आप रख दीजिए पानी के, सारी नदियाँ विश्व की उसके माध्यम से वो जल में प्रवेश करती है, तो जल छिड़की है सब शुद्ध हो जाएगा वो, ऐसे अनंत लाभ है उसके। उसका काष्ठ जो है ना तुलसी का, जो जब तुलसी अपना शरीर छोड़ती है, वो उसका जो लकड़ी होती है ना, वो जब आप किसी मैयत के छाने पर रखते हैं तो वो नरक में जा सकता नहीं है, सीधे भगवत धाम जाएगा वो। तो तुलसी का काष्ठ जो है वैष्णवों की छाती पर रखते हैं हमेशा, तुलसी जहां पर भी स्पर्श करती है वो सब पवित्र हो जाता है। जे तुम्हारा स्मरण होए तारवांछा पूर्ण होए, जो भी क्या, जे तुम्हारा शरण लोए तारवांछा पूर्ण हो, जो भी आपकी शरण लेता है वो सारी उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। मोर यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, मतलब भगवान के धाम में निवास देने की शक्ति वृंदा देवी में, आपकी कृपा से वृंदावन वासी बन सकते हैं हम। यही निवेदन धरो सुखी रनुगता करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। क्या हम आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि आप भक्ति को देने वाली हैं, आप भक्ति दीजिए, भगवान के चरणों में निवास दीजिए। एंड में क्या लिखा है, कोरो निज दासी। जब पुरुष वर्ग गाते हैं तो उनको मन में प्रश्न आता है, दासी क्यों, कोरो निज दास क्यों नहीं, कोरो निज दासी क्यों? क्योंकि ये ब्रज भाव है, इसमें सब सखी भाव में गाते, तो सब लोग पुरुष वर्ग भी है, ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है, तो शरीर का फर्क है, आत्मा तो आत्मा ही होती है। हमारी आत्मा सच्चिदानंद है, आपकी भी आत्मा सच्चिदानंद है, हमारी आत्मा भगवान का दास है, आपकी आत्मा भगवान का दास है। शरीर खाली पुरुष का, स्त्री का, जानवर का, कुत्ते का, बिल्ली का, पंछी का है, लेकिन सब भगवान के दास हैं, और सब भगवान के दास रूप में ये एक अहंकार होता है हमारा कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम जवान हैं, हम सुंदर हैं, सब शरीर का अहंकार है। तो ये सब छोड़कर ये जब गीत गाते हैं तो ये अहंकार छोड़ने का सूचना भी मिलता है उसके अंदर। यू आर नॉट अ मैन, यू आर नॉट अ वुमन, यू आर नॉट एनी बडी, यू आर ओनली गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दास अनुदास। तब स्त्रियों का क्या होता है फिर, वहाँ पर दास, यहाँ पर दास, अल्टीमेटली सब सर्विट्यूड है, ये सेवा भाव है। तो ये वृंदा देवी भगवान की बड़ी विशेष गोपी है, उनका पोजिशन इतना इतना यूनिक है, एकमेव, कि ललिता और विशाखा देवी के अनुगत्य में ये सेवा करती है। और ब्रज में जितनी लीलाएं भगवान करते हैं, करना चाहते हैं, वो सारे लीलाओं का दिग्दर्शन, डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, सब वृंदा देवी करती है। तो ये उनका हेडक्वार्टर्स है, जहाँ पर हम लोग आए हैं, यहाँ पर वो रहती है, ये उनका हेड ऑफिस है। और इसके पास में 1,000 तोता है, और वो 1,000 तोताओं के कई हजारों असिस्टेंट होता है। बड़ा बड़ा उनका समुदाय है तोतों का, शुक कहते हैं उसको। तो वो शुक जो है वो रिपोर्टर है वृंदावन के, जैसे हमारे रिपोर्टर कैसे होते हैं, कहाँ खून खराबा हो रहा है, कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ डकैती हो रही है, कहाँ बलात्कार हो रहा है, कहाँ चोरी हो रही है, उसका ही खबर छापते रहते हैं। कहीं सत्संग हो रहा है, अभी भक्ति विधान हॉस्पिटल का कैंप में अभी यात्रा, अभी वृंदावन पहुंची है, वो छापता है कभी क्या? हाँ, अभी कोई बड़ा अर्थ फोरम का प्रोग्राम हो गया, जी फेस का कार्यक्रम हो गया, मंदिर में पुष्पाभिषेक किया गया 29 तारीख को, कहीं खबर आई क्या उसकी? नहीं, हमारे जो होते हैं ना वार्ताहर, वो खाली गंदगी की न्यूज़ है ना, वो मक्खी वाली, मक्खी कैसी होती है ना, गंदगी पकड़ दी जाके, वैसे खबरों को छापते रहते हैं। लेकिन ये कैसे वार्ताहर है, हाउ वंडरफुल दे आर, ये ब्रिज में जाकर ऐसा मेटिकुलस और सुंदर रिपोर्ट लेके आते हैं। कैसा रिपोर्ट लेके आते हैं, कौन से रंग, किस प्रकार का रंग कहाँ खिला हुआ है। देखो खबर भी ऐसे हो सकती ना कि इस वन में सब पीले फूल खिले हुए हैं, कभी खबर पड़ी कैसे आपने? अरे दुर्भाग्य, भौतिक जीवन में जी रहे हैं, भौतिक दुनिया में, कैसे खबर मिलेगी आपको ऐसे। लेकिन ये तोता लोग जाके ऐसा डिटेल में खबर लेके आते, कौन से प्रकार के फूल खिले हुए हैं, किस प्रकार के पंछी किस वन में अभी विहार कर रहे हैं, कैसा वातावरण है, कौन सा रंग खिला हुआ है, ये सारी डिटेल, एकदम डिटेल में वातावरण की जो जानकारी है वो लेके आते हैं। सारा रिपोर्ट्स जो है वो वृंदा देवी लेती है, उसको एनालाइज करती है कि आज के लिए बेस्ट जगह कौन सी है। फिर उसमें ऋतु का वर्णन भी आता कि इस अभी ऋतु ऋतु ये चल रहा है, अभी हवा कैसे बह रही है, कहाँ से कहाँ बह रही है, वायु गंध कौन सा है इस एरिया में, देखने के लिए कौन सा रंग खिला हुआ है, नाक के लिए कौन से प्रकार की, किस प्रकार की गंध है, ये पांचों इंद्रियों को सुख देने वाले जितने विषय हैं उनकी डिटेल जानकारी ये करते हैं, और कौन से पेड़ किस वन में है, सब प्रकार की जानकारी पहुंचाती है। फिर वृंदा देवी उसको देख कर तय करते हैं कि आज की लीला हम इस वन में करेंगे। फिर इसके बाद में वृंदा देवी का काम शुरू होता है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो भी इतनी डिटेल है। इसके बाद वृंदा देवी तय करती है कि आज क्या लीला होगी, फिर आज लीला के अंदर कौन सा राग गाया जाएगा, आज की लीला में कौन से ताल पर नृत्य किया जाएगा, कौन से राग में गाया जाएगा, कौन से वाद्य बजाए जाएंगे, फिर कौन गाएगा, कौन बजाएगा, कौन नृत्य करेगा, फिर कौन भोजन बनाएगा, कौन से भोजन बनाए जाएंगे, वो सब ऋतु को देखकर अनुकूल, सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्वाद के लिए, सबको देखकर वो अलग प्रकार के व्यंजनों का डिजाइन करती है वो। फिर कौन बनाएगा वो भी तय करती है, उसमें चीफ कुक कौन भी तय करती है, सबको टर्न बाय टर्न मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि समझो अभी ललिता देवी तांबूल बनाने में एक्सपर्ट, तो खाली तांबूल ही बनाते रहेगा, ऐसा नहीं है, वो सब चीज़ में उनका सहभाग होता है। जैसे समझो आप समझो एम्ब्रॉयडरी में एक्सपर्ट हो, लेकिन कभी कभी भोजन भी बनाते हो भगवान के लिए, है ना, ऐसे टर्न बाय टर्न सबको सेवा देती है वो। और फिर राधा कृष्ण का श्रृंगार, राधा का कौन करेंगे, कृष्ण का कौन करेंगे, कैसा श्रृंगार करेंगे, कौन से रंग का श्रृंगार करेंगे, कौन से अलंकार पहनेंगे, कौन सा मणि पहनेंगे, कौन से रत्न पहनेंगे, किस प्रकार के ज्वेल्स पहनेंगे, कैसी मालाएं उसकी होगी, फिर वो रत्न का श्रृंगार जो है ज्वेल्स का है वो अलग, फिर कौन से फूलों की कैसी मालाएं बनेंगी, उसके लिए कौन से वन से फूल चुनना है, और वो कौन चुनेगा और वो कौन आके जमा करेगा, फिर कौन सी सखियाँ उसकी डिज़ाइन के प्रकार माला बनाएंगी, फिर कौन उसको भगवान को अर्पण करेगा। फिर बंद हो गया। इसका पूरा डिटेल में वर्णन जो है, प्लानिंग जो है, वृंदा देवी करती है। और फिर वो प्लानिंग करने के बाद में उसका एग्जीक्यूशन, उसको करने के लिए फिर वो सबको ड्यूटीज बांटती है और करा के लेती है सब कुछ। और उसके बाद में किस समय पर कृष्ण भगवान आएंगे, राधा रानी किस समय पर आएगी, इसका पूरा डिटेल प्लानिंग करती है। फिर उस समय राधा रानी वहाँ से आती है, कृष्ण भगवान वहाँ से आते हैं, और फिर कुंज में कौन पहरा देगा, निकुंज में कौन पहरा देगा, किस समय कौन सी लीला होगी, शुरू में क्या होगा, फिर कौन सा गीत गाया जाएगा, फिर वो शयन में कब जाएंगे, फिर शयन भोग, फिर गोपाल भोग, फिर बीड़ी, ये सब कौन देगा। फिर ऐसा नहीं कि दो घंटे का फंक्शन है, जैसे हमारा विवाह होता है तो कैसे ढाई घंटे का फंक्शन है, पूरा ढाई घंटे का प्लानिंग होता है। ये सूर्यास्त पे शुरू होता है और सूर्य उदय पर समाप्त होता है। और ऐसा मोनोटोनस कार्यक्रम नहीं है कि एक ही चल रहा है, पूरा विविधतापूर्ण है। रात तक वो सुबह जुगल जोड़ी को जगाते हैं गीत गाकर, और जगाकर फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर वापस सोता हमारे ऑन ड्यूटी आफ्टर सूर्योदय। ये रोज का काम है, और कभी कभी यहाँ पर भी मिलने का इंतजाम करती है। तो ये उनका कुंड है, वृंदा कुंड। लेकिन कभी कभी ये जो है ना, आप बैठे ना यहाँ पर कनेक्शन है उसका, वृंदा कुंड का, उस कुंड से। उसका नाम क्या है, गुप्त कुंड। और गुप्त कुंड में केवल राधा और कृष्ण गुप्त रूप में मिलते हैं। वहाँ पर पूरा समुदाय नहीं आता है, वहाँ पर कोई सखी वृंद नहीं आता है, वो अकेले आते हैं। और वहाँ पर मिलन वृंदा देवी, मतलब एक इसमें एक बड़ी विशेष बात है, वृंदा देवी इतना विविधतापूर्वक, इतना डिटेल में आयोजन करते हैं, लेकिन खुद के मर्जी से नहीं करते, ललिता विशाखा से गाइडेंस लेकर करते हैं। उसमें भी समर्पण है, वो बड़ी कुशल आयोजक हैं, आयोजिका हैं, लेकिन उसमें भी उनका इंडिपेंडेंस नहीं है, वो एक शरणागत जीव है। वृंदा देवी ललिता विशाखा का अनुगत्य करती है और उनके निर्देश से पूरी सेवा करती है। और ललिता विशाखा भी खुद के मन से नहीं करती है, कृष्ण और राधा को क्या अच्छा लगेगा इसके अनुसार योजना करते हैं। ऐसा नहीं कि आज मुझे जलेबी खाने की इच्छा है तो जलेबी बनाया जाए आज भगवान के लिए, ऐसा नहीं होता है। भगवान के लिए ही बनाया जाता है, भगवान के लिए ही गाया जाता है, भगवान के लिए ही सखियां श्रृंगार करती है, उनका भी श्रृंगार का प्लानिंग होता है। लेकिन कोई भी सखी मैं सुंदर दिखूंगी इसलिए श्रृंगार नहीं करती, मुझे देखकर कृष्ण को आनंद होगा इसलिए श्रृंगार करती। यहाँ पर ब्रजवासी जो पुजारी होते हैं वो पान खाते हैं, सुगंधी पान, तो उसके पीछे भाव यह है कि जब मैं बहुत ही अंग के पास जाकर श्रृंगार करूंगा तो मेरे मुंह की बदबू भगवान को नहीं आनी चाहिए, इसलिए वो पान खाते हुए श्रृंगार करते हैं भगवान का। मतलब दिखता है कि पान क्यों खा रहे हैं, लेकिन हर चीज जो करते हैं ब्रजवासी वो केवल ठाकुर जी के लिए, आनंद के लिए करते हैं, उसमें मुझे भी थोड़ी खुशी मिलनी चाहिए, ये भाव नहीं रहता है। और वृंदा देवी का भी यही भाव है, इतना बड़ा कुशल आयोजन करती है लेकिन फिर भी सारा भाव है राधा और कृष्ण को संतुष्ट करने का। तो हमें भी यहाँ पर वृंदा देवी से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वृंदा देवी भगवान की इतनी प्रिय सखी है, इतनी प्रिय सखी है, राधा रानी की बड़ी प्रिय सखी है। तो जब राधा कृष्ण का विवाह हुआ तो श्री वृंदावन धाम जो है ना, वृंदावन पूरा धाम को वृंदावन कहते हैं, और उसमें 12 वन है, उसमें भी एक वृंदावन है, मतलब वृंदावन एक छोटी एंटिटी भी है, वृंदावन एक विशाल एंटिटी भी है। तो ये वृंदावन जो है वो राधा रानी ने वृंदा देवी को भेंट में दिया है, उसका राधा रानी का वन है वो, लेकिन वृंदा देवी को उन्होंने भेंट दिया इसलिए उसका वृंदावन नाम पड़ गया। उसमें एक ऋषि ने तपस्या भी किया है, वृंदावन तो बहुत बड़ा धाम है भगवान का। तो ऐसे अनोखा प्रेम, ऐसा कहते हैं कि राधा रानी ने वृंदा गोपी से भगवान की शादी भी कराई है अपने हाथ से। और जब हम प्रार्थना करते हैं ना वृंदावन धाम के लिए, तो उसके भी स्टेप्स है प्रार्थना करने के लिए। सबसे पहले हम वृंदावन धाम को प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में हम जमुना जी को प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में हम गोवर्धन को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जमुना, गोवर्धन और वृंदावन ये अविभाज्य हैं, एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। तो जमुना जी, वृंदावन, पहले वृंदावन, फिर जमुना जी, फिर गोवर्धन, उसके बाद वृंदा देवी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वृंदा देवी इस वृंदावन की अधिष्ठात्री देवता है, जो वृंदावन का लीला का आयोजन करती है। उसके बाद गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान की राजस्थली के रक्षक हैं वो। उसके बाद में उज्ज्वल सुबल को प्रणाम करते हैं, जो भगवान के सखा हैं। उसके बाद में ललिता विशाखा को प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद में लाडली लाल को प्रणाम करते हैं, ऐसे प्रणाम भगवान को करते हैं। तो हर प्रकार की हमको, मुझे हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी ने बताया था किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। तो सारे वर्ग की, शांतरस से लेकर दास्यरस से लेकर, हाँ, सबकी कृपा प्राप्त होती है। तो बीच में गाय की भी वंदना होती है, बीच में सुरभि गाय की। तो ये सब वृंदावन के पावरफुल अधिकारी हैं, जो वृंदावन की कृपा इनके हाथ में है, वो सबको दे सकते हैं। इन सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम बड़े रमणीक स्थान में आए, यहाँ पर बहुत सारे पंछी गुंजन करते हैं अलग प्रकार के, अभी देख रहे ना, एक बार स्तब्ध होकर सुन लो, सब राधा और कृष्ण को पुकारते हैं अलग अलग प्रकार से, अलग अलग समय पर अलग अलग पंछी आते हैं, पुकारते रहते हैं। बहुत रमणीक स्थान है ये। और एक ब्रजवासी बाबा थे, उनका नाम भूल गया मैं, उनका फोटो ऑल्टर पे रखा हुआ है, आप दोबारा देख सकते हैं। तो वो बाबा जो थे, उनको ऐसा प्रेरणा हुई, स्वप्न में प्रेरणा हुई कि ये जो स्थान है जो उनके अधिकार में था, वो दीनबंधु प्रभु को देना चाहिए, हिज ग्रेस दीनबंधु प्रभु, प्रभुपाद के शिष्य हैं, बड़ा प्रेम है उनका ब्रजवासियों के साथ में। तो उनको ऐसा स्वप्न में प्रेरणा हुई कि ये जगह जो है मृत्यु होने के पहले दीनबंधु प्रभु को देना चाहिए। तो उन्होंने दीनबंधु प्रभु को बुलाया और पूरा बकायदा वसीयत किया और दीनबंधु प्रभु को सुपुर्द कर दिया। तो इसलिए ये वृंदाकुंड जो है वो इस्कॉन के अंडर है, बहुत सुंदर डेवलपमेंट उसका हुआ है, वृंदा देवी की स्थापना हुई है यहाँ पर। हर साल में वृंदा देवी की स्थापना का उत्सव होता है, जो इस साल 19 फरवरी को है, और बहुत लोग आते हैं वहाँ से, बहुत उत्सव होता है। बड़े रमणीक स्थान है यहाँ पर, कैसा है ना, ब्रज जो है वो धीरे धीरे अभी लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, लोग आश्रम बनाते हैं, उसमें पैसा बनाते हैं, दक्षिणा दान का बिजनेस बनाते हैं, बहुत सारा भाव का करप्शन आ गया है कलयुग में, ब्रज में भी आ गया है। तो ऐसे वातावरण में, ऐसा ब्रज का सुमधुर वातावरण बनाए रखना, वैसा दृश्य देखने के लिए भी बनाए रखना, पेड़ है, हाँ, असली ब्रज कहाँ है, असली ब्रज मंदिरों में नहीं है, मंदिर तो हमने बनाए हैं अपने साधना के लिए, लेकिन असली ब्रज जो है वनों में है, पर्वतों पर है, यहाँ पर लीला भगवान ने किया है, भगवान ने किसी मंदिर में लीला नहीं किया है। वो कुछ मंदिर है, 7 मंदिर देवालय, वो भगवान के लीला के मंदिर है, बाकी तो हमारी साधना के लिए हमने बनाए। लेकिन लीला स्थली क्या है, लीला स्थली तो ये वन है, ये कुंड है, सरोवर है, नदी है, पर्वत है, ये भगवान के चिरंतन लीला स्थली है। और कितना भी आंखों से उज्जवल हो जाएगा, फिर भी उसका गौरव कभी लुप्त नहीं होगा। लेकिन हम जैसे लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत लोग भी आते हैं साथ में, मुंबई में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अपना अपना कल्चर है, शहर का थॉट प्रोसेस है, सोचने का तरीका है। तो जब ऐसा वातावरण निर्मित होती है, तो हम जैसे मुंबई वाले लोगों को जो अपनी कंडीशनिंग है, उससे रजा मिलती, थोड़ी रेस्ट मिलती है, और हम लोग ब्रज के भाव का, वातावरण का आस्वादन ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए इन जगहों को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ क्या है कि यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो चेतना है, कॉन्शियसनेस जो है, उसको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर उसमें सीमेंट की बिल्डिंग बने हुए तो कैसे ग्रहण करेंगे, हम समझेगा नहीं हमको क्या है इधर। लेकिन ऐसा अगर कुंड है, मंदिर है, वृक्ष, देखो ये देखो नीम का पेड़ है, वहाँ पर नीम का पेड़ है, वहाँ पर इमली का पेड़ है, यहाँ पर कदम का है, वहाँ पर भी आप बैठे वहाँ कदम का है, सुंदर सुंदर सघन वृक्षावली है, पंछी गुंजारव कर रहे हैं, मोर आ रहे हैं, तोता आ रहे हैं, हाँ, किंगफिशर, बहुत सारे अलग अलग पक्षी यहाँ पर आते हैं। लेकिन उन सब के लिए सघन वन चाहिए, वो कंक्रीट की बिल्डिंग पर नहीं आते। मोर भी आएगा तो उसको बड़े बड़े वृक्ष चाहिए, जहाँ पे वो रात को सो सकता है, वहीं पर आएंगे मोर, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, नहीं तो मोर नहीं आते। तो अगर वो मोरों को बुलाना है तो ब्रज की शोभा है, मोर उनको बुलाना है तो आपको ऐसा सघन वृक्षावली तैयार करनी पड़ेगी, तब बाकी पक्षी भी आएंगे, गुंजारव करेंगे, अपना गीत गाएंगे, रोज सुबह गीत गाएंगे, शाम को एक गीत गाएंगे। यही जीवन है ब्रज का, जो हमारे शहर के लोग सब खो चुके हैं उसको। हमारे पास क्या सुनाई पड़ता है, टै 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 टों 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 टी 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 ट्र ट्र ट्र, रिक्शा की आवाज़, गाड़ी की आवाज़, ट्रेन की आवाज़, इसकी आवाज़, उसकी आवाज़, मशीन की आवाज़, कोई कुछ काट रहा है, कोई कुछ ठोक रहा है, इससे हमारा दिन आरंभ होता है। एक बार हॉर्न और बजा गाड़ी का, मतलब सुबह हो गई। यहाँ पर कैसे है, तोता आके बोला, कोयल बोली कि दिन शुरू हो गया। सबसे पहला हमारे श्रद्धानंद हॉस्पिटल में मैं एक बार रात को रुकने गया था, वो जंगल में हॉस्पिटल है हमारा वैसे ही में, तो मैं 4 बजे सुबह कोयल की आवाज़ से उठा और तुरंत उठ के मैंने कोयल का रिकॉर्ड किया, जो सुंदर गा रहे थे खिड़की पे बैठ के। वो असली जीवन है जिसमें प्रकृति के साथ हैं हम, प्राकृतिक रूप में प्रकृति के साथ में है, अप्राकृतिक रूप में नहीं है, नॉट एन आयरोनिक वे। इसलिए दीनबंधु प्रभु को बहुत धन्यवाद है, उन्होंने इतना सुंदर प्रयास करके इतना जगह को डेवलप किया है। देखो बहुत झोपड़ी बना के रखी है, हाँ, गोबर से बनाई हुई, गुप्त कुंड को बनाया है, वृंदा कुंड को मेंटेन किया है, वृंदा देवी को स्थापन किया है, बहुत सुंदर वातावरण है। और कोई कमर्शियलिज्म, कोई ऐसा वातावरण बिजनेस का, धंधे का, पंडागिरी का वातावरण नहीं है। आओ कथा करो, बैठो, यहाँ मत बैठो, उधर मत बैठो, इधर नहीं बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। बैठो आराम से, पेड़ के नीचे कथा करो, प्रसाद लो, दर्शन करो, प्रार्थना करो, एकांत भजन करो। ये ब्रज है, ब्रज में वो सुविधा होनी चाहिए, तब जाकर ब्रज ब्रज के लिए लोगों के मन में आकर्षण होगा, प्रेम होगा और रति बढ़ेगी। तब बम्बई में रहकर भी इसकी याद करेंगे कि कैसा दिव्य अनुभव किया था हमने। तो ये वातावरण का अनुभव देने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, ताकि हमारा शरीर मन बम्बई वाला जो चेतना है वो खंड हो जाए, कहीं उसका भंग हो जाए और ब्रज की चेतना वहाँ पर प्रवेश करे। और बम्बई में रहते हुए भी, शहर में रहते हुए भी ब्रज की चेतना बनी रहे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। कथा तो सुनते हैं, कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं, फाइनली एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ का जो सार है भाव का, द एसेंस ऑफ ब्रज भूमि वी वॉन्ट टू कैप्चर, वो हमको ग्रहण करना है। और जब वो कैप्चर करेंगे आप और हृदय में लेंगे, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। फिर चाहे बम्बई रहो, मद्रास रहो, कलकत्ता रहो, ब्रज में रहो, वो चेतना एक बार आपने स्वीकार कर लिया यहाँ पर आके, फिर आपका जीवन सफल होना आरंभ हो जाता है। तो आप इस पूरी यात्रा को, जिसमें आपने सेवा भी किया, कथा भी सुनी, दर्शन भी किए, इस बेस लाइन को मत भूलना कि हम लोग यहाँ पर उस भाव को ग्रहण करने के लिए आए हैं। जब ग्रहण कर पाएंगे तो हमारी यात्रा भी धन्य है और हमारा जीवन भी धन्य है, क्योंकि एक बार इस भाव को पकड़ लिया फिर कृष्ण हमारे हो जाते हैं। ये भाव कृष्ण के लिए अनुकूल है बहुत। जब ये भाव आपके हृदय में आ जाता है तो हम कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं। इसलिए वृंदा देवी से आशीर्वाद मांगना, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल अधिकारी है। वो सेवा अधिकार दियो करो निज दासी, हाँ, वृंदावन वासी मोरो यही अभिलाष, विलास कुंजे दिए वास। आप देंगे, आप दे सकती हो, आप अधिकारी हो उसके, आपकी कृपा होगी तो भगवान कृपा करेंगे हमारे ऊपर। इस भाव से आप रोज उनको, प्रभुपाद जी इतने दयालु हैं, उन्होंने हमारे मंदिर में हर रोज तुलसी 2 बार पूजा करने का विधान बना दिया है, हर सवेरे और हर शाम को 2 बार वृंदा देवी की पूजा करते हैं। और क्या बोलते हैं, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च, अनेक प्रकार की हत्याएं हैं, भ्रूण हत्या है, बाल हत्या है, स्त्री हत्या है, वृद्ध लोगों की हत्या है, असहाय की हत्या है, और एक है ब्रह्म हत्या, हाँ, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म जानने वाला ब्राह्मण है उसकी जो हत्या है ना, वो भयंकर बताई गई है। उससे उसे करने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाता है आदमी, ये बिकम्स अ घोस्टली पर्सनैलिटी। तो ब्रह्म हत्या भी हमारे हाथ से हुई है, ऐसा नहीं कि ब्रह्म ब्राह्मण को केवल मारने से ब्रह्म हत्या होती है, ब्राह्मण के हृदय को भी ठेस पहुंचाई ना तो भी ब्रह्म हत्या हो जाती है, उसका अपराध भी किया आपने, उसको दुखाया दिल उसका, तो भी ब्रह्म हत्या हो जाती है। ऐसा भयंकर जघन्य पाप भी केवल इस पौधे का 3 बार परिक्रमा करने से नष्ट हो जाता है। ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यंती प्रदक्षिणा पदे पदे। तो ऐसा ये पौधा भगवान ने अपने लीला के माध्यम से हमारे लिए प्रस्तुत किया है। इसलिए हमारी संस्कृति में जो खास करके गर्भवती स्त्रियाँ होती ना, वो गर्भवती अवस्था में भी 3 बार दिन भर प्रदक्षिणा करती हैं। इसके अंदर अध्यात्म तो है ही, भक्ति और साइंस साइंस भी है कि वो जो ऑक्सीजन वृंदा देवी देती रहती है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए वो प्रदक्षिणा करते हैं। और घर के आंगन में वृंदा देवी का वृंदावन बनाते हैं हम लोग, ताकि वहाँ से जो हवा आएगी घर में तो ऑक्सीजन लेके घर पे आएगी, और आते ही लोग दर्शन करेंगे वृंदा देवी का तो उनका हृदय पवित्र हो जाएगा। अध्यात्म भी है, आरोग्य भी है, संस्कृति भी है, कल्चर भी है, सब कुछ है इसमें। इसलिए हमारी संस्कृति पर हमको गर्व करना चाहिए। विदेश की संस्कृति हमको नफरत नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ होने पर वहां पर क्यों भाग रहे हैं हम लोग? हमारा सोचना भी उनके जैसा हो गया है, फिर पहनेंगे क्यों नहीं उनके जैसा? विचार भी उनके जैसे हो गए, जैसा वो सोचते वैसा हम सोचने लगे हैं। इतना वो हावी हो गए हमारे पर कि हमारी सोच भी उनकी हो गई है। सोचो आप, जहां हमारी सोच इतनी श्रेष्ठ है, हमारी संस्कृति, हमारे वेदों की, हमारे शास्त्रों की, पुराणों की सोच जो है, थॉट प्रोसेस इतनी श्रेष्ठ है, तो हमसे उनको सोच लेनी चाहिए। लेकिन हम इतने दुर्भाग्य हैं कि उनकी सोच हम ले रहे हैं, फिर वो जो वहाँ के लोग अपनी सोच से जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो यहाँ की सोच लेने के लिए यहाँ आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? जब जीवन में हार जाते हैं कोई व्यक्ति, परदेसी लोग, तो भारत में आते हैं शांति की खोज में, आत्मा की उन्नति की खोज में भारत में आ जाते हैं, और हम लोग उनके इंद्रिय सुख की खोज में वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पासपोर्ट उनका बनाते हैं, उनका वीज़ा लेते हैं, उनका ग्रीन कार्ड, उनका सिटीजनशिप सब ले लेते हैं, और इसमें इतना गर्व करते हैं कि अभी हम अमेरिकन नागरिक बन गए हैं, हम ब्रिटिश नागरिक बन गए हैं, हमारी चार पीढ़ियाँ इंग्लैंड में रहती है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हमारा मूल जो है ना वो इस संस्कृति में है, और ये संस्कृति को भी हम पालन करेंगे तो भी कृष्ण को प्रिय हो जाएंगे। ओनली इफ यू फॉलो द कल्चर ऑफ भारतवर्ष, वैदिक कल्चर फॉलो भी करेंगे ना केवल एज अ रिचुअल ऑल्सो, चलो भक्ति बाद में करो, एज अ इवन रिचुअल की तरह से भी फॉलो करेंगे ना तो भी भगवान को प्यारे हो जाएंगे हम, क्योंकि कल्चर ऐसा बनाया गया है कि इसको केवल फॉलो भी करेंगे अपने आप भक्ति ऐसे उमड़ आएगी उसमें से नेचुरली, ऐसा संस्कृति का पावर है ये। तो ये संस्कृति अभी नष्ट होते जा रही है, हमको उसको बचा के रखना है ताकि हमारी अगली पीढ़ी आएगी तो समझेगी कि हमारी संस्कृति क्या है। अगर हमारी चार पीढ़ियां परदेश में जन्म हो गया तो क्या पता है गणपति और नवरात्रि और दिवाली दशहरा क्या होता है, उनको क्या मालूम? कुछ भी पता नहीं है उनको। और वहाँ की संस्कृति कैसे ऐशो आराम की संस्कृति है, आप लोग धूप में बैठे हो, जमीन पर बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहाँ चल रहे हो, ठंडा पानी मिलेगा, गर्म मिलेगा, चलते रहते हो आप, विदेशी व्यक्ति नहीं कर सकता है। उनकी इंद्रियाँ इतने भोग से लिप्त हैं कि वो तपस्या नहीं कर सकते हैं, संस्कृति ऐसी है। लेकिन भारत के लोग देखो, वो ब्रजवासी को देखो, कितना लाइन में खड़े रहते हैं, देव धूप में खड़े रहते हैं, ठंड में आते हैं रात को। अरे हमने अभी तो आपने देखा नहीं है, वो पुराने ज़माने में कैंप करते थे ना, तो रात को 12 बजे बीच ठंड में आके लाइन लगाते थे वो, अरे नहीं नंबर नहीं चला जाए हमारा, तो हम लोग उनको रात को बीच में आके कंबल और रजाई देते थे लाइन में लगने के लिए, वो छोड़ने को तैयार नहीं वहाँ से, बोले बाबा ये नंबर ले लो और जाओ कल आ जाओ सुबह। नहीं नहीं नहीं, उनको लगता है कि नंबर जाएगा निकल के, वहीं पड़े रहते थे। ये अपेक्षा से नहीं कि आप लोग उनको ब्लैंकेट देंगे, लेकिन हम लोग फिर जाना देना शुरू किया उनको। इतनी सहन शक्ति कहाँ से आती है बताओ? मिट्टी के घर में रहते हैं, कोई हीटर नहीं, कोई कूलर नहीं, कुछ नहीं। ये हमारी संस्कृति है जो हमको फौलाद की तरह बनाती है, नाजुक कोमल फूल जैसा नहीं बनाती है। फूल तो हृदय से होते हैं हम लोग, लेकिन बाहर से फौलाद की तरह होते हैं। वी आर रेडी टू टॉलरेट एनीथिंग, तभी भगवान की भक्ति हो सकती है। नहीं तो क्या अभी हाँ हलवा पूड़ी और गुलाब जाम खाने से थोड़ी भगवान की भक्ति होती है। खाते जरूर हैं हम, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि संस्कृति हमको बल देगी, कल्चर बल देगी हमको। तो ये कल्चर हमको जागरूक रखना चाहिए, वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, और गर्व करना चाहिए हमारी संस्कृति पर। लोगों को धोती पहनने में शर्म आती है, वो जीन पैंट पहनने में शर्म नहीं आती है, जो वहाँ के गुराह के लोग पहनते हैं, जब वो उधर वो है ना बकरी चलाते हैं उधर ना, तो वो लोग जीन पहनते हैं, तो उनको पहनने में हमको गर्व है, मगर मॉडर्न हो गए, और धोती पहनने में शर्म आती है, बोलते हवा जाती है उसके अंदर, अरे ठंड ठंड लगती है उसके अंदर। बड़े गर्व से हमको पहनना चाहिए, भारतीय वस्त्र पहनना चाहिए। हमारे गुरु जी बताते थे कि अरविंद मफतलाल थे, वो जिस ढंग से धोती कुर्ता और जैकेट पहन के आते थे वैसा आपको रहना चाहिए, ऐसा हमको उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे ही वो आते थे धोती कुर्ता और जैकेट पहनकर, लोग अपने आप खड़े होते थे हाथ जोड़कर ऐसे। अरे डॉक्टर भगवान दास थे दिल्ली के, वे तो नहीं रहे वो, जब हॉस्पिटल बनाया भगवान महाराज हमने महाराज जी, तो महाराज ने बताया कि इसमें धोती कुर्ता हम पहन सकते हैं, लेकिन धोती कुर्ता अगर पहनना है अस्पताल में तो डॉक्टर भगवान दास और अरविंद मफतलाल की तरह पहनना चाहिए, जिसको देखकर लोग तुरंत खड़े होकर आपको वंदन करें। डॉक्टर भगवान दास धोती कुर्ता जैकेट पहनकर अपने क्लिनिक में आते थे आयुर्वेद के, तो सब मरीज खड़े होकर वंदन करते थे उनको। वो हमारा कल्चर है। अभी हमको सूट और टाई में गर्व होने लगा है, उस पर हम अपने को मॉडर्न समझते हैं। ये सोच विचार का परिणाम है। सोच बदलना चाहिए फिर जिंदगी बदलेगी। और यहाँ पर आते हैं वो सोच बदलने के लिए आते हैं। वी हैव टू कम हियर टू चेंज अवर थॉट प्रोसेस फेवरेबल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। अनुकूल्य से संकल्प हो, ये संकल्प करने के लिए आते हैं कि हम भगवान के लिए अनुकूल बने। हमारे विचार, हमारे आचार, हमारा पहराव, हमारे हर प्रकार की जो चीज़ है वो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल बननी चाहिए। और वो केवल इस देश में हो सकती है। और कोई भी देश, कोई भूमि इतनी पावरफुल नहीं है जो आपको भगवान की भक्ति में सहायता करे। ये भूमि आपको स्वतः सहायता दे रही है। मैं बैठ के यहाँ पर बोलता हूँ, मुझे कई बार आश्चर्य होता है, मैं कुछ प्लान करके बोलता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे बोलता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। ये सारे इस भूमि का प्रभाव है। यहाँ बैठ कर जब कथा करता हूँ, बॉम्बे में कथा करता हूँ, जमीन आसमान का अंतर होता है। ये मुझे खुद को पता चलता है, क्योंकि इतना बड़ा करंट मुझे मिल रहा है यहाँ पर ब्रज भूमि का करंट, सुप्रीम करंट आपको चार्ज कर रहा है पूरा। मैं आत्मा को चार्ज कर रहा है। आप चाहे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, आपकी आत्मा इस भूमि में बैठकर बहुत बढ़िया से स्पिरिचुअली चार्ज हो रही है। जन्म जन्मांतर को पर्याप्त हो सकती है वो। एक आपकी ट्रिप यहाँ की जो है वो आपको गौलोक तक पहुँचा सकती है, इतनी शक्ति है इस भूमि में। तो उसको भूलकर हम लोग बम्बई में देख रहे हैं, न्यूयॉर्क में देख रहे हैं, और कहाँ देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं। वहाँ पर जाना चाहिए ऐसा लगता है। छुट्टी कहाँ मनाना है तो स्विट्जरलैंड जाना चाहिए। हाँ, एक एक आदमी की चार चार पत्नियाँ, एक एक औरत की चार चार पति, और दादी की तीसरी शादी क्या बताएं आपको। ये कोई कल्चर है, इस एनिमल कल्चर। हमारा कल्चर जो है बहुत श्रेष्ठ कल्चर है। इस कल्चर पर विश्वास रखना सीखो, इसको अपनी क्या कहते हैं उसको कल्टिवेट करो, परवरिश करो उसको, और गर्व से करो कि हम भारतवर्षी हैं, वैदिक हैं हम लोग। हरे कृष्णा। ज्यादा बोलूंगा तो आपको फिर अजीर्ण हो जाएगा। हाँ, भूख भी लगी है, अभी क्या करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात आपकी यात्रा में बताना भूल गया मैं, ये जो पेड़ आपके सामने खड़े हैं ये सब कल्प वृक्ष हैं। हाँ, सब इच्छा को पूरी करने वाले हैं। आप लोग जरूर इन पेड़ों को मिलो, उनको आलिंगन दो, इनके पास अपने मन की इच्छा को प्रकट करो, वो सब इच्छा को पूरी करेंगे। लेकिन ये मत बोलना कि अच्छा पति दो अच्छा पत्नी दो सुंदर, और बहुत पैसा दो, प्रमोशन दो, और मम्मी को बोलना कि जल्दी मेरे गहने पूरे कर दें, और वो सब मत मांगना इधर। प्रमोशन दो नौकरी में, नौकरी बदली हो जाए, अमेरिकन वीज़ा मिल जाए मुझे, ऐसा मत मांगना। भगवान के विषय में मांगना तो सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। इतनी शक्ति है इन पेड़ों के अंदर, ये कल्प वृक्ष हैं साक्षात। ब्रज के पेड़ जो है ये तो कल्प वृक्ष है नंबर वन। या तो वो ऋषि मुनि है जो ब्रज में पेड़ के रूप में आकर भजन कर रहे हैं, जैसे पांडव लोग भजन कर रहे हैं राधा कुंड के किनारे, श्याम कुंड के किनारे। नंबर टू ऋषि मुनि है। नंबर थ्री राधा रानी का स्वरूप है। सब यहाँ की लता पता राधा रानी का प्रत्यक्ष स्वरूप है। तो हर तरह से ये पेड़ जो है आपके लिए कल्याणकारी है। स्वयं भगवान इन पेड़ों का गौरव करते हैं। जब वो उनका चीरहरण हुआ था गोपियों का उन्होंने किया, और जब धेनुकासुर का वध किया था, उसके बाद में भागवत में वर्णन आता है कितने गौरव करते हैं भगवान इस पेड़ों का। महाभाग कहा है उनको। ये 12 चीजें लोगों को देते हैं, खुद के लिए कुछ रखते नहीं है, खुद कष्ट में रहकर लोगों को सुख देते हैं, ऐसा भगवान गौरव करते हैं उनका। और ये आम पेड़ों का गौरव है, लेकिन ये ब्रज के पेड़ हैं जो ब्रज में निवास लेते हैं। ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि मुझे पेड़ बना दो चलेगा, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो यहाँ का हर जीव गौरवशाली है। और ये पेड़ विशेष करके एक महान वैष्णव, महान महाभाग है, ये हम सबको सहारा देने के लिए आए हैं। और गुरुजी ने हमको बताया था कि जहाँ हो सके, जितना हो सके, धाम में पेड़ के नीचे बैठकर कथा करना, क्योंकि ये पेड़ जो है ना, इनके अंदर एक शक्ति होती है। क्या शक्ति होती है कि समझो, ये भगवान के लीला के प्रेक्षक हैं। ये दे आर विटनेसिंग ऑल दी पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। दिन रात दर्शन करते रहते हैं, और वो जो लीला चल रही है उसकी जो चेतना है, चेतना द कॉन्शियसनेस, उसको ग्रहण करते हैं। और जब कोई व्यक्ति दर्शन करने आता है तो वो चेतना उनको देते हैं वो, सो द गिव एंड टेक, दे कैन गिव। इसलिए पेट के सहारे बैठने से वो चेतना, दिव्य चेतना जो उन्होंने ग्रहण की है वो हम सबको प्राप्त हो जाती है। ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिक होते रहता है। यू मे नॉट नो वाई आर सो हैप्पी, वाई आर सो एंथुजियास्टिक, ये सब इनका कमाल है। इसलिए इनको परवरिश देना चाहिए, इनका सहारा लेना चाहिए, इनकी प्रार्थना करनी चाहिए, इनका सेवा करना चाहिए। मुझे पहले पर आके आपको बोलना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एंड में बोल देता हूँ। जब अगली बार जब आएंगे ना आप, जैसे ही आओगे ना, अभी समझो आप राधा माधव में रह रहे हो या बरेली में रह रहे हो या तो उधर रह रहे हो रंगीली में, कहीं पर भी एक पेड़ आप तय करना कि इस पेड़ की मैं सेवा करूँगी या करूँगा। रोज उसको जल देना, उसकी प्रार्थना करना, प्रदक्षिणा करना, आलिंगन देना। उस पेड़ के साथ में जितने दिन रहेंगे आप, उतना दिन उनकी सेवा करते रहना, हर रोज करना आप ऐसा। आपको इतना अद्भुत आनंद आएगा उसमें और दिव्य अनुभूति प्राप्त होगी। तो वृंदावन के पेड़ों की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।